18 55 खंबे लाल दीवारें 1961 ऊषा प्रेमवदा पृष्ठ संख्या 178। ऊषा प्रेमवदा हिंदी की कुछ इनी गिनी महिला लेखिकाओं में आती हैं जो नारी चेतना का एक संतुलित दृष्टिकोण लेकर चली हैं। अंग्रेजी तथा हिंदी साहित्य में बहुश्रुत ऊषा जी सामाजिक तथा वैश्विक संदर्भ में नारी के बदलते बिगड़ते बनते संवरते रूपों से भली भांति परिचित हैं। प्रस्तुत उपन्यास में उन्होंने आधुनिक शिक्षित नारी की शोषणोन्मुखी त्रासदी को सुचारू रूप से सम्मिलित किया है। नारी का शोषण हर युग में हुआ है, कभी धर्म द्वारा, कभी शास्त्रों द्वारा, कभी राजनीति द्वारा, कभी घर परिवार और समाज द्वारा। आज की नारी जहां सुशिक्षित होकर आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हुई है, वहां उसने इस आत्मनिर्भरता की कीमत को भी चुकाया है, जिसे हम टेराकोटा, डाक बंगला, पतझड़ की आवाज़ें जैसे उपन्यासों में लक्षित कर सकते हैं। प्रस्तुत उपन्यास की सुषमा सुशील सुशिक्षित संवेदनशील अंतर्मुखी तथा मासोपवादी ब्रैकेट में आत्मपीड़क महिला है। परिवार की बड़ी लड़की होने के कारण उसे अपने व्यक्तिगत अरिमानों का गला घोटना पड़ता है, क्योंकि उसके पिता लकवाग्रस्त हो गए हैं और पूरे परिवार का आर्थिक दायित्व सुषमा के कंधों पर आ गया है। सुषमा अपनी पारिवारिक प्रतिशुद्धता की आपूर्ति हेतु इतिहास में एमए करने के उपरांत दिल्ली के एक गर्ल्स कॉलेज में व्याख्याता की नौकरी अंगीकृत कर लेती है। उसकी कार्यनिष्ठा से प्रभावित होकर कॉलेज की प्राचार्य उसे लेडीज हॉस्टल के वार्डन का कार्यभार भी सौंप देती है। अपनी निष्ठा प्रामाणिकता और प्रतिभा के कारण वह अध्यापिकाओं तथा छात्राओं में सबकी प्रिय पात्र बन जाती है। अन्य अध्यापिकाओं की तुलना में अधिक युवा होने के कारण छात्राएं भी उसे ज्यादा पसंद करती हैं। पृष्ठ संख्या 179। सुषमा विवाह योग्य है, उसकी माँ तथा पिता को इस बात का एहसास हो ऐसा नहीं है, परंतु नियति के हाथों वे विवश है। घर का मुख्य स्तंभ ही असाध्य बीमारी का शिकार हो गया है। भाई बहन बहुत छोटे हैं, उनकी उचित शिक्षा दीक्षा पर भी ध्यान देना है। अतः इस प्रकार से सभी ने एक मूक मौन समझौता कर लिया है। पैराग्राफ चेंज। माता पिता तथा परिवार के प्रति स्नेहार्थ होने के कारण सुषमा को अपना जीवन सार्थक होता हुआ सा प्रतीत होता है। वह यौन सुलभ आदर्शवादिता की स्थिति में है, परंतु उसके इस शांत संतुष्ट ठहरे हुए जीवन सरोवर में लहरियां तब अलोड़ित होने लगती हैं जब उसके जीवन में नील नामक एक युवक का प्रवेश होता है। सुषमा की माँ ने तो एक प्रकार से सुषमा की अविवाहित स्थिति को मन से स्वीकार कर लिया था, क्योंकि उसमें ही परिवार की भलाई थी। परंतु सुषमा की मौसी हमेशा सुषमा के विवाह के लिए चिंतित रहती थी। जब वह देखती है कि उसकी बहन और जीजा इस विषय में उत्साहित नहीं है, तो वह अपनी तरफ से कोशिशें शुरू कर देती है। नील का सुषमा को मिलना मौसी की ही योजना का एक भाग है। नील सुंदर स्वस्थ है, सुशील सुशिक्षित तथा आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी है। साड़ियां भेजने के बहाने से मौसी एक दो बार नील को सुषमा के पास भेजती है। इस प्रकार मौसी के माध्यम से सुषमा और नील का परिचय बढ़ता है, जो आगे चलकर प्रणय का रूप धारण कर लेता है। कुछ दिनों के लिए सुषमा सब कुछ भूल जाती है। यौन सुलभ भावनाओं के उद्रेक में वह बहने लगती है। नील के साथ उसका घूमना फिरना बढ़ जाता है और एक अनजान अनचाहे ढंग से उसके मानस पटल पर एक सपना आकार लेने लगता है। भावनाओं के इस स्वप्निल फेनिल परिवेश में जीवन की कठोर निर्मम शुष्क वास्तविकता को विस्मृत कर जाती है। परंतु यह तंद्रिल भद्र रीतावस्था अधिक समय नहीं रहती। कुछ ही समय में सुषमा नील की काव्य गोष्ठियां रंग दिखाती है। गोष्ठी प्रिय अध्यापिकाएं तथा छात्राएं चटखारे ले लेकर इन दोनों के प्रणय संबंधों का जिक्र करने लगती हैं, और धीरे धीरे ही यह सब बातें प्राचार्य तक पहुंचती है। अतः एक दिन प्राचार्य सुषमा को बुलाकर साफ साफ शब्दों में अल्टीमेटम दे देती है कि या तो वह नील से विवाह कर ले, या नील को छोड़ दे, या नौकरी को छोड़ दे। प्राचार्य की एक ही बात पर सुषमा आसमान से सीधे जमीन पर आ जाती है और नील को छोड़ने का निर्णय कर लेती है। पैराग्राफ चेंज। सुषमा के इस निर्णय को लेकर हिंदी के औपन्यासिक आलोचकों में काफी ऊहापोह दृष्टिगोचर होता है। डॉक्टर घनश्याम मधुप इसे उषा जी का आदर्शवाद बताते हैं। मधुप जी के अनुसार उषा जी का रचनाकार आधुनिक होते हुए भी पुरातन पंथी है। मूलतः भारतीय होने के कारण वे कथा के अंत में एक कृत्रिम आदर्श आरोपित करती हैं। सुषमा नील को छोड़ने का जो निर्णय करती है उसे डॉक्टर विमला शर्मा आत्मकुंठा का परिणाम मानती हैं, परंतु डॉक्टर राजरानी शर्मा सुषमा के चरित्र का यथार्थ विश्लेषित करते हुए कहती हैं, इन्वर्टेड कमापन, सुषमा जिंदगी में अपनी जिम्मेदारियों से भागती नहीं है। वह बहुत ही कर्तव्य परायण लड़की है, अपने घर के हालात जानती है। वह जानती है कि छोटे भाई बहनों को पढ़ाना है, पृष्ठ संख्या 180, बहनों की शादियां करनी है। यह बात अलग है कि कई बार अपनी माँ के इस रवैये से वह स्वयं को उपेक्षित महसूस करती है। वह अपना सब कुछ दूसरों पर लुटाती ही रहती है, खाली होती जाती है और अकेलेपन का एहसास उसे तोड़ता जाता है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ हिंदी उपन्यासों में रूढ़ी मुक्त नारी डॉक्टर राजरानी शर्मा, पृष्ठ संख्या 297 से 298। हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं आलोचक कुंवर नारायण इस संदर्भ में कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, किसी भी स्तर पर जीते हुए वे ब्रैकेट में उषा जी के नारी पात्र विवेक के तरफदार हैं। मानो लेखिका इस तथ्य के प्रति बराबर सचेत हैं कि विकासशील जीवन मूल्य मनुष्य की इच्छा क्षमता से अधिक उसकी चिंतन क्षमता पर निर्भर करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ विवेक के रंग डॉक्टर देवी शंकर अवस्थी, पृष्ठ संख्या 37। पैराग्राफ चेंज। डॉक्टर घनश्याम मधुप ने प्रस्तुत उपन्यास के संदर्भ में जो अभिमत व्यक्त किया है उसकी आलोचना करते हुए डॉक्टर पारुकंद देसाई लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, यहाँ दो बातें अंतर्ग्रंथित हो गई हैं। मधुप की मानवीयता और आधुनिकता में कदाचित विरोध है, दूसरे भारतीयता और आधुनिकता में भी शायद वे विलोमी समीकरण बिठाते हैं। वस्तुतः उपन्यास में वर्णित सुषमा की स्थिति हमारे मध्यवर्गीय समाज का आकलन मात्र है। हालांकि नील सुषमा के परिवार का दायित्व भी वहन करने को तैयार है, परंतु सुषमा हमारे समाज की भीतरी स्थितियों से पूर्णतया वाकिफ है। अभी भी हमारे यहाँ यह स्थिति नहीं आई है कि कोई दामाद अपने ससुर के परिवार का संपूर्ण बोझ उठाए और निर्लिप्त भाव से उठाए। शुरू शुरू में ऐसा हो भी सकता है, परंतु यौवन के प्रथम ज्वार के समाप्त होने पर ऐसी स्थितियों में विषभेदी स्वर उभरते ही है। अतः सुषमा का निर्णय विवेक सम्मत ही माना जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ 60 हिंदी उपन्यास डॉक्टर पारुकंद देसाई, पृष्ठ संख्या 128। पैराग्राफ चेंज। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि परिवार का संपूर्ण दायित्व बोझ पर सुषमा अपने व्यक्तिगत प्रेम को कुर्बान कर देती है। सुषमा का यह कार्य मध्यवर्गीय समाज का यथार्थ चित्रण है। आज भी हमारे मध्यवर्ग में बहुत सी ऐसी लड़कियां मिल जाएंगी जो अपने परिवार के लिए व्यक्तिगत भावनाओं का गला घोट देती है। मैं बड़ौदा के एक सुप्रसिद्ध चक्षु वेसरी को जानता हूँ जिनको इस स्थिति तक पहुँचाने में उनकी बड़ी बहन की अहम भूमिका है। तो जिस समय यह उपन्यास लिखा गया उस समय तो लड़कियों में पारिवारिक प्रतिबद्धता का जाल और भी सघन रहा होगा। इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि सुषमा अपने आप में खुश है, वह घुट रही है, लड़ लड़ कर मर रही है। वह जो कुछ करती है वह व्यवस्था के कारण है। उपन्यास में एक स्थान पर अपनी सहेली मीनाक्षी से वह कहती है, इन्वर्टेड कॉमापन, 45 की आयु में भी एक कुत्ता या बिल्ली पाल लूंगी, उसे सीने से लगा रखूंगी। आज से 16 साल बाद शायद तुम अपनी बेटी को लेकर इस कॉलेज में आओ, तब भी मुझे तुम यहीं पाओगी, कॉलेज के इस 55 खंभों की तरह स्थिर अचल। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ 55 खंभे लाल दीवारे उषा प्रियंवदा पृष्ठ संख्या 109-110। सुषमा अपने भावी जीवन का एक रास्ता तथा भयानक अकेलेपन से परिचित है। कभी कभी उसका मन न जाने क्यों डूबने लगता है। अपने परिवार का सारा बोझ अपने ऊपर लिए वह मानो कांपने लगती है। इन्वर्टेड कॉमा अपन तब वह चाह उठती है कि दो बाहें उसे भी सहारा देने को हो। इस नीरवता में कुछ अस्फुट शब्द उसे भी संबोधित करें। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ 55 खंभे लाल दीवारें उषा प्रियंवदा पृष्ठ संख्या 31-32। पैराग्राफ चेंज। सुषमा एक बहादुर दिलेर और जीवट वाली लड़की है। जहाँ एक पुरातन पीढ़ी होने का सवाल है वह उससे कोसों दूर है। उसका वजूद ही उसका प्रमाण है। किंतु वह बेटी होते हुए भी बेटे के धर्म को निभा रही है। पृष्ठ संख्या 181। और इस प्रकार पुत्र विषयक पुराने मिथकों को भी तोड़ रही है। उसका अविवाहित रहने का निर्णय भी उसकी अग्रिम सोच को व्यक्त करता है। पैराग्राफ चेंज। उपन्यास में संस्कृत की व्याख्याता मिस शास्त्री का चरित्र भी भली भांति व्याख्यायित हुआ है। अविवाहित रह जाने के कारण वह अनेक मानसिक कुंठाओं की शिकार हो गई है। लड़कियों की चिट्ठियां चुराकर पढ़ती रहती है। दूसरों के लव अफेयर एंड गॉसिप में दिन रात डूबी रहती है। संस्कृत जैसे सरस विषय की व्याख्याता होने के बावजूद वह नितांत शुष्क नीरस कठोर और चिड़चिड़ी हो गई है। मानवीय प्रेम के अभाव में उसने एक बिल्ली को पाल रखा है। कठोर और चिड़चिड़ी में शास्त्री अपनी बिल्ली को लेकर बहुत ही भावुक हैं। सुषमा को अपने भविष्य जीवन का कुछ कुछ संकेत मिस शास्त्री से मिल जाता है। तभी तो वह कहती है कि मैं भी कभी कोई कुत्ता या बिल्ली पाल लूंगी। बहरहाल हम इतना कह सकते हैं कि उषा जी ने सुषमा के रूप में मध्यवर्गीय शिक्षित नारी का सुंदर सटीक एवं यथार्थ चित्रण किया है। 19वां आंखों की दहलीजे 1969 मेहरुन्निसा परवेज पृष्ठ संख्या 181। हिंदी की आधुनिक लेखिकाओं में मेहरुन्निसा परवेज अपने एक विशिष्ट रचना संसार के कारण अलग पहचान बनाए हुए हैं। आंखों की दहलीज उपन्यास में उन्होंने मुस्लिम समाज के नगरीय परिवेश तथा उसके अंतर्द्वंद्वों को समाकलित किया है। यह प्राय देखा गया है कि मुस्लिम समाज में उच्च वर्ग या मध्यम वर्ग में पारस्परिक रूढ़िग्रस्तता का कुछ अभाव सा मिलता है। यह वर्ग सामान्य रूढ़िगत मुस्लिम समाज से कुछ ऊपर उठा हुआ सा लगता है। संप्रति संकुचित राजनीतिक माहौल में गैर मुस्लिमों द्वारा मुस्लिम समाज पर कोई टिप्पणी हो उससे कहीं बेहतर यह होगा कि इसी समाज में कुछ रोशन दिमाग लोग उसकी विसंगतियों को उकेरित करें। मेहरुन्निसा परवेज यही कर रही हैं। उसमें इस्मत चुगताई और तस्लीमा नसरीन से तीखे तेवर तो नहीं है, परंतु हाँ, अपनी बात को कहना वह भली भांति जानती हैं। प्रस्तुत उपन्यास में मुख्यतया तालिया नामक एक उच्च वर्गीय मुस्लिम महिला को चित्रित किया गया है। तालिया के पिता सिद्दीकी साहब डिप्टी कलेक्टर रह चुके हैं। उन्नत गृह समाज में रहने के कारण जीवन के प्रति देखने की उनकी दृष्टि अधिक व्यापक है। संस्कारगत रूढ़िग्रस्तता से वे ऊपर उठ चुके हैं, परंतु उनकी पत्नी पुराने ख्यालों की है। पति पत्नी में वैचारिक तालमेल न होने के कारण उनका पारिवारिक जीवन प्रायः तनावग्रस्त रहता है। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि ऐसे वातावरण में पले बड़े बच्चे बाहर प्रेम को तलाशने का यत्न करते हैं। अतः तालिया शमीम नामक एक युवक से प्रेम विवाह कर लेती है। शमीम एक गंभीर विचारशील और उदारवादी विचारों से संपन्न अध्यापक है। उसके प्रेम में सच्चाई और निष्ठा है। वह तालिया को तहे दिल से प्रेम करता है। विवाह के कुछ वर्ष गुजर जाने पर भी तालिया को औलाद नहीं होती। शारीरिक निरीक्षण के उपरांत डॉक्टर इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि तालिया कभी माँ नहीं बन सकती। बावजूद इसके समीम के व्यवहार में कोई नमी नहीं आती। ऐसी स्थिति में मुस्लिम शरीयत के अनुसार समीम दूसरा विवाह भी कर सकता है, परंतु वह उसका विचार तक नहीं करता। परंतु दूसरी तरफ तालिया के भीतर बैठी हुई औरत छटपटाती रहती है, पृष्ठ संख्या 182। और भीतर में किसी स्त्री का बांझ रह जाना या उस पर बांझेपन का ठप्पा रह जाना न केवल लज्जास्पद समझा जाता है, अपितु वह उस व्यक्ति के लिए तो अभिशाप सा बन जाता है। मेहरुन्निसा परवेज खुद इन स्थितियों से गुजर चुकी हैं, अतः अपनी कैफियत में वह बताती हैं, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, तालिया का दुख जो देख लेता वह जो भोग रही है यह मेरा दुख है, क्योंकि इन दिनों मेरा नाम भी बांझ औरतों की लिस्ट में था। मैंने उस दुख को अक्षरों का लिबास उढ़ा, ब्रैकेट में उढ़ा दिया है। मेरी भी शादी के 10 वर्ष बीत गए थे और मैं माँ न बन पाई थी। कसूर चाहे जिसका भी रहा हो, कलंक तो औरत के ही माथे पर होता है ना। दुख भी वही झेलती है, सहती है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ। लेखिका की कैफियत आधुनिक हिंदी उपन्यास डॉक्टर रामजी मिश्र डॉक्टर भदौरिया पृष्ठ संख्या 421। समीम वैसे विचारशील और संवेदनशील व्यक्ति है, परंतु तालिया की माँ को हमेशा चिंता रहती है। वह सोचती है कि कभी सामाजिक पारिवारिक दबाव में समीम बदल भी सकता है, अतः अपनी बेटी को माँ बनाने के लिए वह एक दूसरा रास्ता अख्तियार करती है। वह जावेद नामक युवक को तालिया से शारीरिक संबंध जोड़ने के लिए प्रेरित करती है। प्रेम के प्राकृतिक वातावरण में तालिया जावेद की ओर बह जाती है। तालिया के लिए यह एक अप्रत्याशित और अकस्मात सा था। उसे यह ज्ञात नहीं था कि वह उसकी माँ की योजना अनुसार चल रही है। कृष्णा सोबती के उपन्यास मित्रों मरजानी में मित्रों की माँ भी अपनी बेटी के लिए प्रेमी की व्यवस्था करती है। यहाँ तालिया की माँ ऐसा करती है, परंतु इन दोनों स्थितियों में बड़ा अंतर है। जहाँ प्रथम में केवल वासना पूर्ति का उद्देश्य है, वहाँ इस उपन्यास में एक मुस्लिम विवाहित नारी की व्यवस्था का प्रश्न है। तालिया भावनाओं के उद्रेक में बहती जाती है, परंतु उसके भीतर का अपराध बोध दिन ब दिन गहराता जाता है। आंखों की दहलीज उपन्यास चरित्र और मर्यादा का प्रतीक है। उसकी चेतना बार बार कचोटती है कि उसने आंखों की इस दहलीज को लांघ कर ठीक नहीं किया। पैराग्राफ चेंज। तालिया जावेद के उन संबंधों के पीछे तालिया की माँ की जो भूमिका है, उसके संदर्भ में डॉक्टर असगर वजाहत यह टिप्पणी करते हैं कि संतानोत्पत्ति की क्षमता उनकी बेटी में नहीं है। ऐसी डॉक्टरी रिपोर्ट के बावजूद वे ऐसा क्यों करती हैं? परंतु मध्यम वर्गीय मुस्लिम समाज से वाकिफ कोई भी व्यक्ति यह जानता है कि ऐसी स्थितियों में डॉक्टरी रिपोर्ट के बहाने पुरुष को साफ बचा लिया जाता है। फलतः रिपोर्ट के बाद भी तालिया की माँ ऐसा करती है तो अस्वाभाविक कुछ भी नहीं। पैराग्राफ चेंज। जावेद मोटर तथा बसें चलाने का काम करता है। वह अवसरवादी, चालाक, धूर्त और स्नोब किस्म का एक आकर्षक युवक है। उसका गोरा रंग और युवा शरीर किसी भी युवती को आकर्षित कर सकता है। तालिया की उदासी को भांपते हुए तथा उसकी माँ की शह पाकर वह तालिया के पीछे लग जाता है। रात दिन उसके रूप गुण पसंद और सलीके से तारीफ करता है। जब वह भाप लेता है कि तालिया भी उसकी ओर आकर्षित हो चली है, तब डेम दिखाने के बहाने से वह उसे एकांत प्राकृतिक स्थान पर ले जाता है और मौका पाकर उसे अपने आलिंगन में कस लेता है। इन्वर्टेड कमापन। जावेद ने तालिया को इतने जोर से कस लिया कि तालिया पल भर को उस कर्म आलिंगन में बंधी सब कुछ भूल गई। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ। आंखों की दहलीजें पृष्ठ संख्या 52। बाद में तालिया अपने इस आचरण से जब स्वयं को अपराधी महसूस करती है, तब उसे समझाते हुए जावेद कहता है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, आप बेकार इतना सोचती हैं, चलिए नाश्ते पर। तालिया, हम खुद नहीं चलते, खुदा हमें चलाता है। जिस दिन यह समझ जाओगी उस दिन सब हल्का लगेगा। खुदा ने हम दोनों को एक ही मूड में बनाया होगा। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ। आंखों की दहलीजें पृष्ठ संख्या 53। पर तालिया, यह गड़बड़ कैसे हो गई? दोनों पुतले कैसे बदल गए? क्रमशः तालिया का अपराध बोध दूर हो गया और वह सचमुच में जावेद से प्रेम करने लगी। परंतु उनकी ये प्रेम गोष्ठियाँ अधिक समय तक नहीं चली, क्योंकि जावेद की पत्नी को इस बात का पता चल गया। तालिया अपने पति के पास लौट आती है, परंतु उसका अपराध बोध अब और भी गहराने लगता है, क्योंकि समीम उसे बेतहाशा प्यार करता है। इन्वर्टेड कॉमा ओपन, कभी प्यार से लिपटा लेता, वह इतने स्नेह से उसे सहला रहा था कि जैसे कोई माँ काफी दिनों बाद लौटे बच्चे को सहलाती है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ आँखों की दहलीजें, पृष्ठ संख्या 100। समीम की यह सरलता और भलमनसाहत तालिया को और भी परेशान करती है। वह दंड चाहती है, और एक बार तो वह समीम से पूछ भी बैठती है कि यदि कोई शादीशुदा लड़की दूसरे शादीशुदा पुरुष से प्रेम करने लगे तो क्या यह बात उसे बतानी चाहिए। समीम उसे एक सामान्य प्रश्न समझकर सहजता से कहता है कि ऐसी स्थितियों में औरत को चुप रहना चाहिए, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा ओपन, वह आदमी बच्चों को छोड़कर उसके पास तो आएगा नहीं, फिर आदमी का कुछ नहीं बिगड़ता, सब तरफ से औरत ही गुनहगार सिद्ध होती है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ आँखों की दहलीजें, पृष्ठ संख्या 102। फलतः अपने देवता स्वरूप पति को धोखा देने के कारण तालिया का अपराध बोध इतना बढ़ जाता है कि वह खिड़की से कूदकर आत्महत्या का प्रयास करती है, परंतु समीम उसे बचा लेता है। यहाँ से प्रस्तुत उपन्यास की कहानी का एक तीसरा मोड़ शुरू होता है। तालिया हर तरह से समीम को सुखी देखना चाहती है, और उसकी दृष्टि में सुख है संतान प्राप्ति। फलतः वह अपनी एक सहेली जमीला को समीम से शादी करने के लिए राजी कर लेती है, परंतु तालिया को मालूम है कि समीम इस प्रकार नहीं मानेगा, अतः वह एक योजना बनाती है जिसके तहत जमीला उसके बिस्तर पर सो जाती है। तालिया को मालूम है कि एक शारीरिक संबंध हो जाने पर समीम अपनी सज्जनता के कारण जमीला को अपनाने के लिए विवश हो जाएगा। तालिया अपने इस मकसद में कामयाब हो जाती है, और वह उन दोनों के विवाह के उपरांत वह कहीं चली जाती है।